ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाल भारत दीर्घकालीन विद्युत व्यापार समझौते से नेपाल की जल विद्युत के बाजार को सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का कथन। देश के विभिन्न भागों में बाढ़, भूस्खलन और डुबान की समस्या शुरू हो चुकने के जिक्र के साथ क्षति न्यूनीकरण एवं राहत व उद्धार की व्यवस्था करने को लेकर प्रतिनिधि सभा में सांसदों ने किया सरकार का ध्यान आकृष्ट। काप्लेजुंग के फत्तांगलोंग में भूस्खलन में दबने से एक ही परिवार के चार लोगों की हुई मौत और फ्रीज हो चुकी रूसी संपत्ति से यूक्रेन के लिए 50 अरब डॉलर का कर्ज देने के G7 की बैठक के निर्णय में कोई कानूनी आधार नहीं है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दावा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने नेपाल भारत के बीच हुए दीर्घकालीन विद्युत व्यापार समझौते के क्रियान्वयन से महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने का विश्वास जताया। आज हेटौडा सब स्टेशन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि नेपाल भारत दीर्घकालीन विद्युत व्यापार के समझौते ने नेपाल में मौजूद अपार जल विद्युत की संभावनाओं के विकास के लिए बाजार सुनिश्चित किया है। बरसात के मौसम में 6 महीने भारत में हो रहे बिजली निर्यात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि इस साल से बिजली का निर्यातक देश बनने की स्थिति दिख रही है। उन्होंने कहा कि बिजली के व्यापार से विदेशी मुद्रा संचय में योगदान पहुंचने के साथ साथ नेपाल भारत के बीच मौजूदा व्यापार घाटे को कम करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में नेपाल में खपत होकर शेष करीब 40 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को निर्यात करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मौके पर ऊर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत ने कहा कि नेपाल में ऊर्जा क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि देश में अतिरिक्त 28,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की कार्ययोजना के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी के अंदर प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाएगा और मनोनयन प्रथा का अंत किया जाएगा। आज काठमांडू में अनेरा स्वीयो क्रांतिकारी की चौथी पूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष प्रचंड ने बताया कि पार्टी के विधान अधिवेशन से प्रत्यक्ष निर्वाचन करने का निर्णय हुआ है और अब पार्टी के सभी निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की जाएगी। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में विनियोजन विधेयक 2081 अंतर्गत वन तथा वातावरण, पेयजल, संचार तथा सूचना प्रविधि और संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के विनियोजन शीर्षकों पर विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श में सांसदों ने बजट विनियोजन को प्रभावकारी बनाने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रदेश और स्थानीय सरकारों को भी सहज होने के हिसाब से बजट प्रबंधन करने की बात पर जोर दिया। सांसदों ने कहा कि संघीय सरकार से मिलने वाले सामान्यकरण अनुदान को समय पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, बजट को समस्या की पहचान करके समाधान पर केंद्रित होना चाहिए और पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए अच्छे कामों को निरंतरता दी जानी चाहिए। इसके अलावा जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, चूरे दोहन को रोकने, वन जंगल का संरक्षण करने, ग्रामीण और विकट क्षेत्रों में भी स्तरीय इंटरनेट सेवा की व्यवस्था करने, पर्यटन संबंधी आयनों को समय सापेक्ष बनाने जैसी बातों पर सांसदों ने जोर दिया था। साथ ही बरसात शुरू होने से देश के विभिन्न भागों में बाढ़, भूस्खलन और डुबान की समस्याएं शुरू हो चुकने के जिक्र के साथ सांसदों ने क्षति न्यूनीकरण, उद्धार और राहत की व्यवस्था पर काम करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। काप्लेजुंग जिले की फत्तांगलोंग गांवपालिका वार्ड नंबर 2 खेजिनी में बीती रात भूस्खलन में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य दो लोग घायल हो गए। फत्तांगलोंग गांवपालिका वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष भूपेंद्र चौलागाई के मुताबिक भूस्खलन में दबने से फत्तांगलोंग गांवपालिका वार्ड नंबर 2 खेजिनिम के 69 वर्षीय राम बहादुर लिंबू, उनकी पत्नी जसमाया और लिंबू दंपति की बेटियां 9 साल की गंगा और जमुना की मौत हो गई। 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में सहभागिता के लिए स्विट्जरलैंड के जेनेवा में रहे राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल कल जर्मनी के औपचारिक दौरे के लिए प्रस्थान करेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति पोडेल जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर के निमंत्रण पर जर्मनी के औपचारिक दौरे पर जा रहे हैं। आषाढ़ 3 गते को उनके जर्मनी के राष्ट्रपति के साथ औपचारिक भेंटवार्ता के कार्यक्रम हैं। ये जानकारी पर राष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता अमृत बहादुर राय ने दी। ज्ञात हो कि नेपाल और जर्मनी के बीच सन 1995 अप्रैल 4 को कूटनीतिक संबंध स्थापित हुआ था। उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामिछाने ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्थापन को और अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए सेवा प्रवाह को प्रविधि मैत्री बनाने की जरूरत है। आज काठमांडू उपत्यका ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय का निरीक्षण करने के दौरान गृहमंत्री लामिछाने ने प्रत्येक प्रहरी कर्मचारी को नागरिकों के साथ अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने और काम के प्रति और अधिक जिम्मेदार होने का निर्देश किया। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने कहा कि संचार तथा सूचना प्रविधि के विकास के लिए नेपाल और भारत के बीच उच्च स्तर का सहकार्य आवश्यक है। नेपाल के लिए भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव से आज संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में हुई भेंटवार्ता में मंत्री शर्मा ने भारत में कुछ दिनों पहले गठित नई सरकार को बधाई देते हुए कहा कि नेपाल भारत के बीच के संबंध नई ऊंचाई के साथ आगे बढ़ेंगे। नेपाल सरकार द्वारा आगामी आर्थिक वर्ष से शुरू होने वाले सूचना प्रविधि दशक प्रस्ताव के विषय में जानकारी देते हुए मंत्री शर्मा ने कहा कि कम समय में सूचना प्रविधि के क्षेत्र में प्रगति करने वाले भारत के अभ्यास और अनुभव से नेपाल सीखना चाहता है। मौके पर राजदूत श्रीवास्तव ने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण के क्षेत्र में भारत ने प्रगति की है। उन्होंने आगे कहा कि नेपाल की सूचना प्रविधि के विकास में भी भारत सरकार सहयोग करेगी। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री बलराम अधिकारी ने कहा कि सहकारी की समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल उच्च स्तरीय आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम में 100 दिनों की उपलब्धियां प्रगति और आने वाले दिनों की कार्ययोजना सार्वजनिक करते हुए मंत्री अधिकारी ने कहा कि दीर्घकालीन रूप से समस्या समाधान करने के लिए प्राधिकरण गठन की तैयारी की जा रही है। सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक का अंतिम मसौदा तैयार कर संसद में ले जाने की तैयारी की है। 100 दिनों की उपलब्धियों और प्रगति की विवरण साझा करने के लिए आज मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री हरिप्रसाद उप्रेति ने कहा कि सैनिक नियमावली संशोधन प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया है। सरकार ने आगामी आषाढ़ तीन गते यानी 17 जून सोमवार के दिन इस्लाम धर्मावलंबियों के त्यौहार बकर ईद उल अजहा के मौके पर सार्वजनिक छुट्टी देने का निर्णय किया है। ये जानकारी गृह मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेखित है। गंडकी प्रदेश सभा सदस्य फणिन्द्र देव कोटा को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। गंडकी प्रदेश सभा की आज की बैठक में सभामुख कृष्ण प्रसाद धीताल ने देवकोटा को उनके पद से मुक्त करने की सूचना प्रदेश सभा में साझा की। उन्होंने माओवादी केंद्र संसदीय दल के व्हीप का उल्लंघन करते हुए इसी जेठ 28 गते प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुरेंद्र राज पांडे को विश्वास मत दिया था। इस पर व्हीप के उल्लंघन को कारण बताते हुए माओवादी केंद्र ने उन पर कार्यवाही करने का सभामुख को पत्र लिखा था। बता दें कि विश्वास मत के दूसरे ही दिन गंडकी प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुरेंद्र राज पांडे ने देवकोटा को ऊर्जा मंत्री पद पर नियुक्त किया था। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार काठमांडू घाटी समेत बागमती प्रदेश के कुछ स्थानों में शनिवार यानी कल से मॉनसून सक्रिय होगा। विभाग के मुताबिक देश के पूर्वीय क्षेत्र कोशी प्रदेश में मॉनसून की बारिश शुरू हो गई है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में मॉनसून धीरे धीरे सक्रिय होता जाएगा। महाशाखा के मौसमविद सरोज पुड़ासैनी ने बताया कि बहरहाल देश के पूर्वी हिस्से में मॉनसून प्रणाली का प्रभाव है और बाकी हिस्सों में पश्चिमी वायु तथा भारतीय राज्य बिहार के आसपास न्यून चापीय प्रणाली का प्रभाव है, जबकि अन्य क्षेत्रों में मॉनसून सक्रिय नहीं हो पाया है। प्रेस काउंसिल नेपाल ने पत्रकार आचार संहिता के क्रियान्वयन के संबंध में आज रेडियो नेपाल के साथ अंतर्क्रिया की है। रेडियो नेपाल के सभा हाल में आयोजित अंतरक्रिया में रेडियो नेपाल के कार्यकारी निदेशक बुद्धि बहादुर केसी ने कहा कि रेडियो नेपाल राज्य द्वारा दिए गए दायित्वों के अनुसार प्रसारण को समावेशी और जनपक्षी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कहते हुए कि रेडियो नेपाल स्वनियमन पर जोर देकर प्रसारण दिशा निर्देश शैली की किताबें और प्रसारण आचार संहिता लागू करता आ रहा है। कार्यकारी निदेशक किसी ने कहा कि रेडियो नेपाल लाभ और लोकप्रियता अर्जित करने की मंशा से ही सिर्फ काम नहीं करता है। प्रेस काउंसिल नेपाल के अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत ने कहा कि पत्रकारिता पेशे को गरिमामय और विश्वसनीय बनाने के लिए मीडिया को भी आंतरिक आचार संहिता बनानी और लागू करनी चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब्त की गई रूसी संपत्ति का उपयोग कर यूक्रेन को $5 अरब का कर्ज देने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा रूसी संपत्ति को जब्त करने और उसके ब्याज को यूक्रेन के लिए उपयोग करने का कानूनी आधार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि रूसी संपत्ति को जब्त करके उसके ब्याज को यूक्रेन के लिए उपयोग करना चोरी है और इसकी सजा जरूर मिलेगी। इससे पहले G7 शिखर सम्मेलन में यह सहमति बनी कि रूस की जब्त की गई संपत्तियों का इस्तेमाल यूक्रेन को $50 अरब देने के लिए किया जाएगा। इसका इस्तेमाल यूक्रेन रूस से लड़ने में करेगा। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा जिस प्रकार से पश्चिमी देश रूस के साथ बर्ताव कर रहे हैं इससे यह पता चलता है कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल भारत दीर्घकालीन विद्युत व्यापार समझौते ने नेपाल की जल विद्युत के बाजार को सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का कथन, देश के विभिन्न भागों में बाढ़, भूस्खलन और डुबान की समस्या शुरू हो चुकने के जिक्र के साथ क्षति न्यूनीकरण एवं राहत व उद्धार की व्यवस्था करने को लेकर प्रतिनिधि सभा में सांसदों ने किया सरकार का ध्यान आकृष्ट। तापलेजुंग के फत्तांगलुंग में भूस्खलन में दबने से एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत और फ्रीज हो चुकी रूसी संपत्ति से यूक्रेन के लिए $50 अरब का कर्ज देने के G7 की बैठक के निर्णय में कोई कानूनी आधार नहीं है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दावा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।